इस संसार में आसक्ति ही हमें संसार के आवागमन में लाती है। संसार से कामनाएं आती हैं, उससे क्रोध होता है, विवेक नष्ट हो जाता है, इसलिए आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। केवल कर्तव्य निर्वाह के लिए, जीवन निर्वाह के लिए संसारिक कर्तव्य करना उचित है। और विशेष रूप से जैसे कि हमने कल बतलाया था, भगवान की भक्ति करना ही हमारे लिए मंगलप्रद है। प्राचीन काल में महाराज भरत, जिसके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है, वे समस्त पृथ्वी के राजा थे, एक क्षत्र। उन्होंने संसार की असारता, दुख ये सब समझकर आधी आयु में, अर्थात 50,000 वर्ष की आयु में संसार को मलवत प्रत्याग कर दिया। मलवत माने क्या है? जैसे टट्टी लगने पर बेचैन आदमी हो जाता है, टट्टी हो जाने के बाद में बेशांति अनुभव करता है, ठीक ऐसे ही हमारे भरत महाराज संसार को त्याग दिया। भरा पूरा संसार, अपनी पत्नी, पुत्र, इतना बड़ा राज्य, सब कुछ को तुच्छ के समान प्रत्याग करके चले गए वन में भगवान का भजन करने के लिए। और भजन करते करते भावावस्था में भजन की आइए बैठिए, भजन की उन्नत अवस्था में पहुंच गए, किंतु उस अवस्था में भी एक हिरण के बच्चे के प्रति आसक्त होने से 3 जन्म उनका नष्ट हो गया। क्योंकि भावावस्था तक पहुंच गए थे, इसलिए 3 जन्म के बाद में तो वो भगवान का भजन करके मुक्त होकर के भगवान की सेवा प्राप्त हो गए। किंतु हम लोगों के लिए तो भावावस्था में भी नहीं गए हैं, इसलिए इस आसक्ति से मरने के बाद में जिस वस्तु में आसक्ति रहेगी फिर वैसा ही जन्म होगा। इसकी पूरी विस्तृत कथा हमारे श्रीमान माधव महाराज जी बतलाएंगे, आप लोग इनके मुख से सुनो। एक तो आगे
बोला था भट्ट
महाराज के, अच्छा अच्छा, तब किसका चरित्र? प्रहलाद महाराज।
अरे तू आगे चले जाओ।
उपस्थित वैष्णव बिंद गौर प्राण सज्जन बिंद मातृमंडली को
यथाजोग्य दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। अभी आप लोग श्री गुरु महाराज से मुख से सुना भरत महाराज जी, जिसके बारे में आप लोग श्रीमद सनातन के मुख से सुन चुके हैं, वो कैसे भजन किया फिर भगवान को प्राप्त किया। आप लोग अभी श्रीमद रामचंद्र गुरु के मुख से सुन रहे थे कि कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिरन उतर ही पारा। कलयुग में भजन करना बहुत ही आसान है, और युगों में ये सत्य युग है, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके लिए कहा गया कृति जब है तो विष्णु त्रेतायान जजतो मखि द्वापरे परिचर्यायां कलौ संकृत केशवम। कृति जब है तो विष्णु, सत्य युग में जो भजन करना चाहते थे वो हजारों हजारों शब्द बिना खाए पिए ध्यान करना पड़ता था, और त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था, और द्वापर युग में भगवान का अर्चन, भगवान की पूजा, और कलयुग में केवल भगवान का नाम कीर्तन करने से ही बेड़ा पार हो जाता है। आप लोगों ने भी सुना नाम की महिमा। इसलिए गुरु जी ने आदेश दिया कि अजामिल के चरित्र के बारे में कुछ आलोचना की जाए। अजामिल की जो कहानी शास्त्र ये भागवत में कहा गया है, ये सत्ययुग की बात है। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, वो प्रतिदिन हवन करते थे, उनके माता पिता परिवार जैसे हम सबका उनका भी था। एक दिन हुआ क्या, अपने पिताजी के चोरों के लिए वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए थे, क्योंकि चोरों करने के लिए सब कुछ लकड़ी अलाउ नहीं है, इसे स्पेशल जैसे बेल हो, साल हो, ऐसे कुछ विशेष लकड़ी से यज्ञ होता है, गुलर ऐसे गए। जाकर के एक शूद्र को एक शूद्रानी को दोनों को आपस में गलत व्यवहार करते हुए देखा, देखते ही उनका मन चंचल हो उठा। थे वेदक का ब्राह्मण, सती सत्य स्त्री थी, घर में बच्चे थे, होने पर भी उनका मन चंचल हो गया। अब धीरे धीरे क्या किया, अपने घर के प्रति आसक्ति को छुड़ा करके उस आसक्ति को उस शूद्रानी के चरण में दे दिया, और एक दिन हुआ क्या, घर बार छोड़ करके उसी के साथ रहने लगे, और एक एक करके उनको 8 बच्चा पैदा हुआ। छोटे बच्चे का नाम रखा नारायण, और वो इतने आसक्त थे बातों बात में नारायण नारायण नहीं करता था। और जब सब घर पर छोड़ के आ गए, अपनी पत्नी है, इतने बच्चे हैं, पालन पोषण करने के लिए ऐसे कोई बुरा काम नहीं है जो उन्होंने किया हो। आज इस जगत में जो जन्म लिया इधर मरना ही पड़ेगा। भागवत गीता में कहा जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म वितस्य। भगवान कृष्ण ने हमें कहा जो जन्म लिया उनको मरना पड़ेगा, जो मरा वो भी जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे गिर अजामिल का भी काल आया। इतना पाप कर्म किया तो बच्चों को पालन पोषण करना है, तन मन वचन शरीर से मन से और वाणी से जो पाप किया, जम के 3 दूत विशाल विकराल रूप बना करके उनको आत्मा को खींच कर ले जाने के लिए आया। जिन्होंने उनको देखा, देखते ही नारायण 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 बोल उठा, जीव नारायण नारायण बोल उठा। भगवान इतने कृपालु हैं, आखिर उनका नाम लिया गया आखिर समय में, तो हुआ क्या, भगवान ने अपने 4 दूतों को भेज दिया, नारायण 4 दूत को भेज दिया। जिन नारायण के दूत आ गए, आकर के जम मार्ग दूतों को मार भगाया। गाड़ी तो बहुत पापी है, विष्णु के दूतों ने बताया आर्य धर्मों के ठेकेदारों, ये आखिर में क्या होता रहा, तो नारायण नारायण कर रहा है, इसलिए हम प्रभु के दूत हैं, इनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जमदूतों ने बताया अरे तो हमने बेटा का नाम लिया है, थोड़ी भगवान का नाम लिया। माने ने लड़ाई हुई, लड़ाई में जमदूतों को मार भगा दिया। जमदूतों ने जमुना में जाकर के बहुत मन खट्टा हो गया, जब माने से बोला आज हम लोग रेजिग्नेशन दे रहे हैं, हमें नौकरी नहीं करनी है आपकी। जब माने पूछा क्यों बेटा, क्या बात है? नहीं नहीं हमें नौकरी करनी नहीं है। अरे आखिर बात क्या तो बताओ। हे प्रभु जी, हम सोचते थे कि आप सबसे बड़े हैं, सबके प्रभु हैं, आपसे भी कोई बढ़ करके हैं, आपसे भी कोई प्रभु है। बताया हाँ। बोले बात क्या है? तो बताए अजय मिल्ला के पापी था उस समय, जगह में सबसे बड़ा वही पापी है, उनको हम लाने के लिए गए थे। चार बहुत बड़े महापुरुष आए, चार भुजाए वाले हैं, आकर के हमसे बराबर युद्ध में हमें मार भगाया, कुछ नहीं कर सके। तो जब हमारे मन तो मुस्कान करके कहा देखो तुम्हें एक नियम बता दे, कहा तुम्हें जाना है और कहा नहीं जाना है। तो बताइए क्या, कहा जाना है नहीं जाना है? तो बताया जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेन चितस्तन स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नमति चक्षुरदेहि हो। जीवा कभी भगवान के नाम उच्चारण नहीं किया हो, जब कोई कृष्ण को प्रणाम नहीं किया हो, ऐसे दुष्टों को पापी को बांध करके घसीटे मेरे पास ले आओ, जो कभी भूल करके भी एक बार भगवान का नाम कर लिया हो या भगवान को प्रणाम किया हो, भगवान को स्मरण किया हो, उनके पास भूल के मन कभी मत जाना। ऐसे तो कहा गया जो दशा समय यज्ञ करके उनको भी जन्म लेना पड़ता है, दशा समय यदि पुनरपि जानते कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय, कोई दस समय यज्ञ भी करे फिर उनको जन्म लेना पड़ता है। कोई भगवान कृष्ण को हे कृष्ण मैं आपका हूँ प्रणाम करे, उनको अनुमति का बनाना नहीं पड़ता है, भगवत में चला जाता है, जन्म मरण से छुटकारा पाकर जाके भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए बता उनके पास मत जाओ, ये तुम्हें नियम बता दिया। जब ऐसे लड़ाई हुई, कथापकथन हुआ दोनों में, जमदूत और विष्णुदेव में, पता नहीं सब सुना था। जब उनका होश आया तो जमदूत चले गए, बेचारी मैं तो अपने बेटा के लिए नारायण नारायण को कहा था, आप प्रभु इतने कृपालु हैं, उन्होंने मार भगाया मुझे मृत्यु से बचा दिया, ठीक है और मैं घर में नहीं रहूंगा, ये सब आसक्ति छोड़ दूंगा, ये सब तो जंजाल है, हमें भगवान का भजन ही करना है, ये तो हम बचा नहीं सकते हैं, हमें भजन करना है। क्या किया? छाड़ो घर बार चलो हरिद्वार, सब कुछ छोड़ करके आ गए हरिद्वार में। हरिद्वार में आकर के भजन किया, भजन करके जब आखिर में भजन सिद्धि हो गई, अब एक दिन जगत छोड़ के जाने का समय आ गया। उस समय वही चार कृष्णदूत रथ लेकर के आए, अब बताए आप चले आपको वैकुंठ में जाना है। अजामिल ने पूछा नहीं प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, एक संशय है, ये संशय को मेरा दूर करके ये मन को शांत करें तभी मैं आपके साथ जा सकता हूँ। अच्छा बेटा पूछो क्या प्रश्न है। तब बताए देखिए इससे पहले जब मेरे मौत आई थी उसमें जमुन के तीन दूतों आकर के मुझे पकड़ के ले जाना चाहा, आप लोगों ने उनको मार भगाया, उस समय मैं आप लोगों को पैर छूना चाहा, आप लोग अंतर्धान हो गए, पर आज ही आप लोग आए मुझे कह रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आदर के साथ ले जाना चाहते, कारण क्या है? तो पता देखो उस समय तुम केवल एक बार उनका नाम उच्चारण के था मरते समय, उस समय तुम्हारा कोई शक्ति नहीं हुई थी, इसमें भजन करके तुम्हारा सब जो कसर था, जो पाप था, जो अपराध था, सब दूर हो गया है, इसलिए तुम वैकुंठ जाने के योग्य हो, इसलिए हम तुम्हें पैर भी छूने देंगे और सब कुछ करेंगे। ऐसे करके उनको ले गए। ये जगत में दिखाया नाम का महिमा कैसा है। एक बार गुरु जी दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे, एक छोटा सा बच्चा था, 6 साल का लड़का, पूछा ये गुरु जी भगवान को तो बुद्धि बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों बेटा? बोले वो तो अपने बेटा के लिए नाम करा और हुआ क्या, भगवान ने तो अपने दूतों को भेज दिया। पूरे छोटे बच्चे की कथा सुनकर मन मुस्काए, तो बेटा ऐसे नहीं, भगवान इतने बुद्धिमान है, समस्त जगत के बुद्धिमानों में बुद्धि को एकत्र किया जाए तब पिंड पाषाण के बराबर नहीं होगा। भगवान अत्यंत कृपालु है, जैसे माँ बाप कृपालु है बच्चे के लिए, भगवान उससे भी करोड़ों करोड़ गुण कृपालु है, इसलिए अपने दूतों को भेजा था उद्धार करने के लिए। ऐसे ही हम देखते हैं कि कलयुग में हो किसी भी युग में हो, कोई भगवान का नाम पुकारते हैं, भगवान उनको सब समय अपनी कृपा बरसाते हैं। जैसे कहा कि हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान तो कृपालु है ही है, तो भगवान के नाम और भी कृपालु है। आप सबने रामायण के सीरियल देखा, महाभारत के सीरियल देखा, जब सीता माता को रावण चुरा के ले गया, हनुमान जी पता लगा करके आए, क्या किया हनुमान जी, जय श्री राम करके पुजार भरा लंका में पहुंच गया। वही भगवान को लंका जाने के लिए पुल बांधना पड़ा, और पुल बांधे कैसे, हनुमान जी नौल दीप सब बड़े बड़े चक्कर ला रहे हैं, राम राम करके छोड़ दे पानी में तैरने लगता है। देखिए जिस सागर को कूद सक, जिस सागर को कूद सके ना बिना पुल के राम, कूद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। भगवान राम को पार करना पड़ा पुल बांध करके, हनुमान जी भगवान का नाम लेकर के चले गए। जब पुल बंद रहा था तब रामचंद्र ने सोचा, हो देखो तो ये बंदर लोग मेरा ही नाम लेकर के बड़े बड़े चट्टान को पानी में रख रहा है, पानी ये तैर रहा है, मैं तो जरा परीक्षा करके देखूं। भगवान राम ने क्या किया, एक झाड़ी के पीछे चले गए और चार पांच काम कर लिया, फेंका छप शब्दों का डूब गया, फिर एक फेंका ऐसे छप छप डूब गया। हनुमान जी अब आए पत्थर लेकर के, प्रभु को देख करके बेचैन हुए, कहां गए प्रभु मेरे, कहां गए, देखने लिए तो रूप को बढ़ाया, शरीर को बढ़ाया, देखा छिपे हुए उधर, खुद चले राम जी के पास, मैं प्रभु आप क्या कर रहे हैं, भगवान जा जाओ अपने काम करो, इधर किस लिए आया, नहीं प्रभु जी आप इधर एक बार झाड़ी में छिप कर बल क्या रहे हैं, मुझे बताना ही पड़ेगा। राम बोले कि नहीं शर्म लग रहा है, हनुमान छोड़ने वाले नहीं है, जब भक्त प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भी प्रतिज्ञा करते हैं, भगवान को भक्त की प्रतिज्ञा कर रखना पड़ता है। हनुमान क्या कहूं, मैं देखा कि तुम लोग मेरे नाम लेकर के पत्थर को तैरा रहे हो, तो मैं क्या क्या देखूं, तो मैं तेरा पत्थर छोड़ के देखूं, तैरता है डूबता है सब डूब रहा है। हनुमान हंस पड़े, प्रभु आप जिसको तैर देंगे जिसको छोड़ देंगे वो तो गया खुदा के कसम, वो कहां जाएगा, जहां नाम में जाएगा, हम लोग आपके नाम की सहारा लेकर के पत्थर छोड़ते हैं, इसलिए पत्थर तैरता है, इसलिए आपसे आपका नाम इतने की पाल में मरे ये जगत को दिखाना, इसलिए हम ऐसे करके पुल बांधा। फिर महाभारत सीरियल देखा, जब द्रौपदी देवी को चीर चुराया जा रहा था, दुशासन के 10,000 हाथी का बल शरीर में था, द्रौपदी जी अपने पतियों की ओर देखा, जब जुआ में हार गए तो सब लोग अर्जुन को और भीम का रहा नहीं गया, भीम जी गदा लेकर उठ खड़े हुए, युधिष्ठिर को पकड़ कर बैठा दिया, अर्जुन धनुष लेकर उठ पड़े उनको भी बैठा दिया, देखो तो क्या होता है। जब द्रौपदी किसी तरह से अपने लाज को रक्षा नहीं कर सके, भीष्म पितामह की ओर देखा, गुरु कृपाचार्य की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, जब कुछ नहीं हो क्या किया, हे गोविंद राज शरणागत हूं जीवन हारी, हे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूं, अब मेरा लाज उठी जा रही है, आप इसको रक्षा करें। हुआ क्या, साड़ी खींचे तो हरा दुशासन, साड़ी बढ़ाए सब, दुशासन के हाथ भुजा में 10,000 हाथी का बल था, साड़ी खींचते खींचते थक गया बेचारा, और साड़ी का कोई अंत नहीं हुआ। ऐसे ही कलयुग में इससे और आसान है, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करने से बड़े बेड़ा पार हो जाएगा। जब जी न्यूयॉर्क में प्रचार कर रहे थे अमेरिका में, तब किसी ने पूछा कि गुरुजी मेरा स्वामी जी मेरा बहुत टेंशन है, मैं कितना दवा ले जाऊं डिप्रेशन का, मेरा फायदा नहीं हो रहा है। गुरु जी ने बताया, बेटा अगर तुम्हें मेरे बात में विश्वास हो तुम कब भगवान को नाम करो जोर जोर से, देखो तुम्हारा टेंशन दूर हो जाएगा, कोई मैं एक हफ्ता हूं नहीं तो मेरे पास आके बताना। ऐसे नाम का चमत्कार है, वो एक दिन दो दिन के बाद ही उनका माइंड बिल्कुल फ्री हो गया है, और मन में काम लगता है, बिजनेस में काम मन लगता है। ये भागवत में जो कहा गया है, बल्कि बात भागवत ऐसे ग्रंथ है, ये सारा करें, हरिनाम करें, उनका भी देखेंगे सब तरह से कल्याण ही कल्याण है। यहाँ हम गुरु श्री रूप से नाम की महिमा और भागवत भाव श्रवण करेंगे। आज नहीं कर रहे पंचाकर पुत्र उपस्थ कृपा सिंधु भय वचन पतिता मन पवन भो वैष्णवे भो नमो नमः।
बहुत सुंदर।
आप चैतन्य महाप्रभु की थोड़ा सा कृपा का वर्णन करें तो,
या कुछ हरि कथा बोली माइक दे। रसानंदा से
श्री राम कृष्ण पादां सहितं ललिता श्री शांतां कृष्णाय वासुदेवाय गुरवे परमात्मने अनंत क्लेश नाशाय गुरुनामे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमाराय सर्वधाय नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।
फल कीर्तन करें
है
कितना जो फल कीर्तन महीना के कीर्तन करते हैं
विश्व वंदनीय विश्व की अन्यतम विभूति रूपा प्रभु की आज्ञा है। महाप्रभु जी के करुणागम की चर्चा की जाए। मैं आप महापुरुष के प्रभु के आगमन पर कितना गर्वित हूँ। भागवत जी का निमि महाराज का वक्तव्य मुझे बहुत स्मरण हो रहा है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां शरणं गुरा तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ। ये दर्शन चिंता मने लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम मोहि दुर्लभम। आप श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा मूर्ति हम सब पर कृपा करने के लिए पधारे हैं और ये आपकी आज्ञा का पालन भी आपकी कृपा लाभ करने का ही एक माध्यम है ऐसा मानकर आप ही की कृपा से कुछ कहने का अपने को धन्य करने का प्रयास करता हूँ। पात्रा पात्र विचार नहीं ना ही स्थाना स्थान जिही जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। पात्र अपात्र के विचार के बिना श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा जैसे अपने पूर्वाचार्य पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भगवान ने तो कहा कि माम ये प्रपद्यन देवता माया नेता तरह देते लेकिन श्रीमद् महाप्रभु ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीमद् महाप्रभु बिना किसी पात्र का भी विचार के बिना किसी प्रगति के भी अपेक्षा किए श्री भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। लेकिन जब ये अज्ञानी जी हम झुके भी नहीं प्रणाम भी नहीं किया तो स्वयं संन्यास लेकर सबके हृदय में करुणा का संचार करने वाले लोग सब जग को ये माखन चोरा आज बनो Oh,
झुके बिना तो पानी नहीं पिया जा सकता, अगर जीव झुकेगा नहीं तो वो भगवत रस कैसे पान करेगा। हम जमीन पर जाए, हमको पानी मिला दो, उनका बाबू जी झुकी, उनका नहीं मैं तो झुकूंगा नहीं, उनका फिर पानी आपके मुंह में नहीं आए। भगवान कहते कम से कम झुको तो माम नमस गुरु, लेकिन जीव को उसके भीतर करुणा उसको झुकाए प्रणाम कराए, इसके लिए गौर हरि ने संन्यास दिया। श्री महाप्रभु चरण के इस तीन बार संध्यावन में उस सन्यासी के आप तो आप तीन तीन सब जन को ये माखन जोड़ा, आप तने बैरागी महाप्रभु जी के इस स्वरूप का दर्शन करके सबकी आंखें नम हो गई, सबके प्राण समर्पित हो गए। तो मानो हमें प्रणाम के लिए भी गौर हरि ही अपने जीवन में उस संन्यास को धारण किया। ये करुणा की एक अपूर्वतमता है, अंतमता है, जिससे हम महाप्रभु जी के त्याग से, विष्णु प्रिया जी के त्याग से, श्री माता शची जी के त्याग से द्रवित होकर जब भगवत चरणों में समर्पित हुए तो भगवान की भक्ति हमें श्री गौर हरि ने प्रदान की। और वो भक्ति भी उन्नत उच्च प्रसाद जो भक्ति श्रेयम, अभी जैसे वो पूर्वाचार्य कह रहे थे कौन सी भक्ति, वो भी इंद्रिय भक्ति रसम पिबती यह सब गोपी, जो सर्वेन्द्रिय से भगवत रस का पान करती है वो गोपी, ऐसी भक्ति मधुर भक्ति का पान श्रीमन महाप्रभु पात्र पात्र के विचार के बिना किया। केवल मधुर भक्ति उन्नत उच्च भक्ति श्रीयम हरि ही पूर्ण सुंदर द्विति कथम संदीपिता सदा हृदय कंतरे सुकृत वह शची नंदन। श्रीमन महाप्रभु जी के लिए जब श्री गौर हरि माता से आज्ञा लेने के लिए गए हैं, माता ने कहा कि हे निमाई मैं तो तेरे हाव भाव लक्षण देखकर पहले ही जानती कि तू घर में नहीं रहेगा, ईश्वरपुरी सन्यासी से तेरा लगाव, सेवा तेरा भाव, तेरी आसक्ति, ये मुझे तेरे सन्यास की पूर्व सूचना तो पहले ही दे रही थी, लेकिन मैं तुझे सन्यास की आज्ञा देते समय ये कुछ पूछ सकती हूँ कि मेरे लिए क्या विलंब दे रहे हो? तुम सन्यासी होकर जगत का उद्धार करोगे, जीव का मात्र का कल्याण करोगे, मुझे भी तो कोई आधार दे दो। उनका माता मैंने आपको एक परम आधार दिया। उनका माता ने कहा कौन सा आधार दिया है? उनका मैया ने कहा मैंने तुम्हें एक दिव्य पोता दिया है। माता ने कहा तुमने मुझे कौन सा पोता दिया है? उनका मैया कृष्ण नाम पोता तुझे को दिया है। संकीर्त नहीं कभी करो आजान लंकित भुज कन पाप दातव, संकीर्त नहीं कभी करो कमला यताक्ष विश्वम भरो द्विज भरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करना होता। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं मैया जब मेरी याद आए तो कृष्ण नाम से दुलार करना, कृष्ण नाम का स्मरण करना, कृष्ण नाम का संकीर्तन करना, मेरी याद में भी तुम्हें भगवत रस तुम्हारे प्राण में संचरित होगा। मानो इस विषय हमको हमारे लिए महाराज श्रीमन हमारे प्रभुराते गुरुदेव प्रभु कहते हैं श्रीमन महाप्रभु चरण कहा भैया हमारा अधिकार श्री कृष्ण नाम में, हम श्री कृष्ण नाम का स्मरण करें, श्री कृष्ण नाम ही हमारे भीतर भगवान की इस रसा बुद्धि को हमारे प्राणों में संचरित कर देगा, हमारे हृदय में कृष्ण जो है वो रसा स्वादा करवा देगा। हमको मात्र श्री कृष्ण नाम में रुचि तक जाना है, बाकी काम सब श्री प्रियालाल जी की श्री कृपा के द्वारा संपन्न हो जाएगा। नामे रुचि जीवे दया, नामे रुचि वैष्णव सेवो यही पे बढ़ो ना ही धर्म सुना। जीवे दया नामे रुचि, नाम की रुचि का कमाए ये सब कृपा का ये सब बारंबार है। नाम की निष्ठा, नाम ही कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निष्ठा। जब पंडित राज जगन्नाथ जी के लिए काशी के पंडितों ने कहा कि आप गरम गरम घृत पी करके अपना प्राण त्याग लो, आपका उस यवन स्त्री से विवाह करने का यही प्रायश्चित है, तो उनको पंडित राज प्रभु को हुआ हो इतना बेशकीमती जीवन जो मैंने उपासना में किया, क्योंकि उस यवन स्त्री में उन्हें भगवान बड़े समीप दिखे, नियरिंग ब्यूटी गॉड इनकार्नेशन। पंडित राज जगन्नाथ जी की उस भाव स्थिति को तो नहीं पढ़ते लोग समझे, नाम पाप निवृत्ति के लिए नहीं करना है, नाम तो भगवान की रसा बुद्धि के आस्वादन के लिए करना है। जैसे परम पूज्य महाराज श्री कल बताया कि भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए ये हमारी उपासना है, हमारी साधना है, वो बोध तुम्हें प्राप्त होगा। तुम इस प्रकार का विचार ही मत करो, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, प्रेमेर कारण भक्ति करे खुदो, प्रेमेर उदय होय प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुलकादि भगवत सुधार, अनायास भव क्षय कृष्णे सेवोन, एक कृष्ण नाम फले के पाई हित धो। हेम कृष्ण नाम यदि लय बहुपार, तबु यदि प्रेम लहे नहि असुधार, तब जानी अपराध कहाँ ते प्रचोर, अपराध रहित नाम बीजन है। भागवत जी का महाप्रभु अपने से अलग कुछ नहीं कहा, भागवत जी का ही जो एक दर्शन है राम धाम में हम श्रीमद महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक से ही भागवत जी का दर्शन करते हैं, भागवत जी का स्वाध्याय करते हैं, भागवत जी का चरण चामक करते हैं, और 3 वर्ष से महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक के प्रथम 3 वर्ण का ही चिंतन कर रहे हैं, चेतो दर्पण मात्र, चेतो दर्पण मात्र। और आयु भर महाप्रभु जी के शिष्टाष्टक से ही श्रीमद भागवत जी का चरण चापन करेंगे। भागवत जी ने अपनी अपना भावांजलि भागवत जी के चरणों में अपना आत्म समर्पण करेंगे। श्रीमद महाप्रभु चरण का नाम संकीर्तन यस्य, भागवत जी का तो एक परम प्रसाद है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परनामो सन्नस्तम नमामि हरे विपद योगी नाम नृप निर्णीतम हरे नामानुकीर्तन आपन्न संस्कृति घोराम यदनाम विशो गृहम तथा सत्यो विमुच्ये यद विभेदि स्वयं भयम् सर्वं करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव। ऐसा जो भगवान का नाम संकीर्तन भागवत जी का भी एक महाप्रसाद है, उसकी गौर हरि से हमें प्राप्त हुआ, ये साधन भी है साध्य भी है। स्यात् कृष्णनाम चरितादि सिताप्य विद्या पितृकोपतप्तरसनस्य न रुचिकान् किन्तु आदर अदनुदिनम् अनुसंयुज्यता स्वावधि क्रमात् भवति तद्वत् मूलहंत्री। रूप गोस्वामी प्रभु का ये सिद्ध ये उपदेशामृतम है भैया, ये कृष्णनाम मात्र किन्तु आदर अदनुदिनम् अनुसंयुज्यता स्वावधि क्रमात् भवति तद्वत् मूलहंत्री। इस अज्ञान रूपी संपत्ति को निवृत्त करने के लिए थोड़े समय में इसकी निवृत्ति हो सकती है, अगर किन्तु आदर अदनुदिनम् करो सही दुष्टा आदर पूर्वक इसी भगवान के नाम का अगर हम आश्रय लेंगे, जिसके विषय में किसी पात्र होने का किसी स्थान का कोई विचार नहीं। हमारे परम आराध्य प्रभु कहते हैं जिसके साथ शर्त है वो भगवान का नाम नहीं है, भगवान के नाम के साथ ये नियम है कि कोई नियम नहीं है, भगवान के नाम के साथ एक ही शर्त है कि कोई शर्त नहीं है, कैसे भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। और ये भगवान का नाम हमें जैसे भगवान महाराज श्री का हमने महाराज श्री के श्रीमुख से सुना, नाम का एक ही फल है भगवत प्रेम, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा, और जो हमें फल प्राप्त होते हैं ये बहिरंग है, ये आनुषंगिक है। चावल के साथ भूसा तो पैदा होगा ही, भूसे की चाहे कितनी कीमत हो गई है, ये आनुषंगिक फल तो मिलते ही रहेंगे, प्रतिष्ठा भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन नाम का एकमात्र निश्चित फल है कि हमें भगवान के चरण कमलों का प्राप्त हुआ, जो जीवन का परम पुरुषार्थ है। जारी आ जारी सामने जारी लागे जारी पदार तिन सम जारी पदार। श्रीमद् महाप्रभु जी के गुरुदेव उनके लिए कहा, जब उन्होंने पूछा कि मैंने मुझे ये कैसा कृष्ण नाम आप दे दिया है, उनका हे भाई धन्य हो तुम्हें कृष्ण प्रेम दुर्लभतम प्राप्त हो गया। जारी आगे तिन सम जारी पदार नाम सब कली काले नाही आर भरम सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रे मर। श्रीमन महाप्रभु अपने प्रकट काल में पात्र अपात्र के विचार के बिना सबको दुर्लभतम भगवान का मधुर प्रेम दिया, और श्रीमन महाप्रभु के एक संदेश और एक अपना ही स्वरूप कृष्ण नाम धरती पर प्रकट किया है कि मैंने तो सबको पात्र पात्र विचार के बिना कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, अब इस कृष्ण प्रेम को तुम नाम के स्मरण के द्वारा भगवान के नाम को भी किसी पात्र पात्र का विचार नहीं है, भगवान के नाम का मात्र स्मरण करने वाले को निश्चित ही सुनो और लेकर निरपराध हरि के
एक कीर्तन सुनाइए, एक कीर्तन। তুমি প্রহ্লাদ মহারাজের
जाके
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि। सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित त्रिदंडी पादगण वैष्णव वैष्णवी और अन्य श्रोता। कल हमने अभी बड़ी सुंदर सुंदर कथा हुई, महाप्रभु की कृपा के ऊपर में उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रवचन किया। महाप्रभु की कृपा आज विश्व भर में फैल रही है, उसमें जाति पाति कुल कोई विचार नहीं, पात्र पात्र का कोई विचार नहीं। कैसा सुंदर वर्णन किया नाम के महिमा में भी आप लोगों ने सब सुना। जैसे मैं कल कहा था कि अभी धर्म के नाम पर हिंदू क्रिश्चियन ईसाई इत्यादि जो नाम चल रहे हैं यथार्थ में स्वरूप के धर्म नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है। शरीर तो आज न कल नष्ट हो जाएगा, इससे जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि का जो धर्म का ये एक सामाजिक श्रृंखला के लिए इसका विधान किया गया था। यथार्थ में प्रेम सनातन है, शरीर सनातन नहीं है, शरीर का धर्म सनातन नहीं है। इसके अंदर में आत्मा है और इसके अंदर में परमात्मा जी कृष्ण है। जीव का जब उस कृष्ण से संबंध हो जाता है किसी एक्सपर्ट गुरु के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, सदगुरु के भी लक्षण है। समस्त शास्त्रों के विचारों में पारंगत हो शिष्यों का समस्त संदेह जैसे दूर कर सके, भगवान की अनुभूति हो। भगवान की अनुभूति नहीं होने से अपने हृदय के भगवान को दूसरों को कैसे दे सकते, और संसार से विषय से विरक्ति भी हो। ऐसे संलक्षण गुरु के द्वारा ही हमको कृष्ण से संबंध हो सकता है। वो संबंध क्या है विचार करते हैं। जैसे संसार में भाई का संबंध है, सखा का संबंध है, पुत्र का माता से पिता से संबंध है, पत्नी का संबंध है, और इससे भी अधिक एक और भी भाव है जो केवल मात्र गोपियों में है, दूसरों में नहीं है। कृष्ण के साथ में हमारा संबंध जैसे हनुमान का राम के साथ में दास और प्रभु का संबंध था, जिस प्रकार से ब्रज में सखाओं का कृष्ण से सखा का संबंध था, जिस प्रकार से मैया यशोदा का नंद बाबा का कृष्ण के प्रति पुत्र वात्सल्य भाव था, और जिस प्रकार से गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रियतम संबंध था, कृष्ण के साथ में गोपियों की शादी नहीं हुई, शादी तो उनकी सत्यभामा रुक्मिणी से हुई, किंतु कृष्ण उनके प्राण बल्लभ थे। नित्य काल से उस अप्रकट जगत में तो है ही, ये कृष्ण के ही अभिन्न अंग है ये गोपियां, और इस जगत में भी जन्म से ही उनके प्रति प्रीति है। विवाह करने में एक बंधन होता है, वो बंधन क्या? वो बंधन यह है कि स्त्री को पति का दासी होकर के रहना पड़ता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, नहीं पालन करने से उनको नरक इत्यादि का भय शास्त्रों में दिखलाया गया है। पति लंगड़ा लूल्हा कुबड़ा निर्धन चाहे जैसे भी कोढ़ी भी हो तो भी उसका पत्याग नहीं करना चाहिए, इसके हमारे भारत शास्त्र में उदाहरण है। पतिव्रत धर्म से ही सूर्य का उगना बंद कर दिया, ये सब उदाहरण है, किंतु इसमें यही एक बंधन है, पति के आश्रित स्त्रियों को होना होता है। किंतु कृष्ण ने गोपियों के लिए क्या कपड़ा, रहने का स्थान या कुछ दिया? कुछ भी नहीं। कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा को अपने घर से निकालने का डर दिखला सकते हैं, किंतु गोपियों को तुम्हारे अपने घर से निकाल दूंगा कर सकते हैं? बल्कि गोपियां कर सकती हैं, इस काले को कुंज से निकाल दो, आने मत दो। कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, इतना भाव है, जिसे प्रेम के मारे कृष्ण उठते और बैठते हैं, ये गोपियों का भाव है। इसलिए कृष्ण ने कहा, न पारे हम निर्वध्य संजुजा, हे गोपियों तुम्हारा प्रेम परम निर्मल है, मैं ब्रह्मा की आयु लेकर के भी करोड़ों करोड़ों जन्मों में तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। तुम लोगों ने हमारे लिए पति को छोड़ा, घर छोड़ा, लोक धर्म छोड़ा, आर्य धर्म छोड़ दिया, गुरुजनों की बात का उल्लंघन कर दिया केवल मेरे लिए, फिर मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? यदि कहूंगे ये तो कुछ वर मांग लो तो तुम तो यही कहोगी अपनी सेवा दीजिए, तो मैं तो फिर और ऋणी हो जाऊंगा। दूसरी बात एक और है, ये कृष्ण के लिए गोपियों ने सबको छोड़ा, पति माता पिता गुरुजन लोक धर्म वेद धर्म, यहां तक कि कृष्ण के लिए नंगी भी हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कृष्ण गोपियों के लिए क्या माता पिता को छोड़ देंगे, ब्रजवासियों को छोड़ देंगे, या अभी भी जो भजन कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे? जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, इनकी प्रतिज्ञा झूठी पड़ जाएगी, किसी को नहीं छोड़ सकते, यहां तक कि आधुनिक भक्त जो भजन कर रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं, और लोगों की तो बात क्या है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता, मैं किसी को भी तो छोड़ नहीं पाता, इसलिए तुम लोग अपनी सहृदयता से अपने साधु गुणों से मुझे क्षमा कर दो तो हो सकता है, किंतु मैं तो तुम्हारा चिन्ह रहूंगा ही, तुम्हारे ऋण से मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। इन गोपियों के लिए कहा, किंतु राधिका जी के लिए क्या करेंगे? राधिका जी के लिए, राधिका जी में वो भाव है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव से अधिरूढ़, उससे भी मोहन एवं मादन भाव जो किसी भी गोपी में नहीं है, जिसी के लिए कृष्ण उनके विशेष वशीभूत रहते हैं, ऐसा प्रेम किसी में नहीं है। यही प्रेम भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। चैतन्य महाप्रभु इसका आस्वादन करने के लिए और जीवों को मंजरी का भाव ये देने के लिए कृपा करके जगत में आए थे। अनर्पित चरिम चिरात करुणावतीर्ण बलौ समर्पयी तुम उन्नतोज्वल स्वभक्ति समर्पयी तुम कृपया कृपा करके देने के लिए क्या उन्नत उज्जवल रस श्री उन्नत उज्जवल जो राधिका का भाव है ये दिया नहीं जाएगा इसका स्वादन करने के लिए और राधिका जी के दासी का भाव इससे परम दुर्लभ और कुछ नहीं है इसको देने के लिए उसका श्री जिस प्रकार से लता होती है उसमें पत्ते और मंजरियां होती हैं हवा के झोंकों से मंजरियां और पत्ते हिलते हैं तो उस लता की शोभा है। राधा जी लता है कल्प लता है कृष्ण प्रेम की और सखियां उनकी पत्ते हैं उनकी दासियां उनकी मंजरी भाव है। इसी शोभा को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु करुणा करके आए थे जिसका वर्णन ये लोग कर रहे थे। पात्र का कभी भी कोई विचार नहीं किया उनको पात्र दे करके और कृपा कर दिया। ये महाप्रभु की अद्भुत कृपा है। इसके लिए कैसे इसका साधन होगा वो श्रद्धा से आरंभ करना होगा। श्रद्धा भजन क्रिया साधु संग पहले साधु संग इसके बाद में गुरु निष्ठा गुरुकरण इत्यादि फिर दूसरी बार साधु संग फिर भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति इसके बाद में निष्ठा रुचि आसक्ति तब प्रेम इस प्रकार से बढ़ेगा। किसी सद्गुरु के अनुगत्य में जो रसिक और तत्वज्ञ वैष्णव बिना उनके अनुगत्य में ये चीजें नहीं मिलेगी इसलिए उनके अनुगत्य में ये सब शिक्षा करके उस प्रेम को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके प्रसंग में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे इस प्राचीन संस्कृति पर कुछ आक्रमण हो रहे हैं। अभी सुना आप लोगों ने राम जो जगत में आए अयोध्या में जन्म लिए पिता का आज्ञा पालन करने के लिए सीता लक्ष्मण जी के साथ में वन में गए दंडकारण्य में रावण ने उनको चोरी करके ले गया और फिर वहां पर रामचंद्र जी ने बंदरों के माध्यम से पुल बंधवाया और उस पार जाकर के रावण का वंश ध्वंस करके विभीषण को राज्य देकर के लौटे। भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत सारे पुराण ऐसा कहते हैं। यहां तक कि भारतवर्ष में प्राचीन काल से अब तक कब्बू रामायण उधर दक्षिण भारत में इधर हिंदी में हिंदी माध्यम में तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामचरितमानस इत्यादि 60-70 प्रकार बंगला में भी किसका रामायण
तुलसीदास
कृतिवास रामायण इत्यादि 50 हैं। हमारे राम सीरियल में उन्होंने रामानंद जी ने ये सब दिखलाया है। राम ही नहीं है ये नास्तिकता कहां से आई। अभी रामचंद्र जी जाते समय में बंदरों से जो पुत बनवाया उसका साक्षी है। आते समय में उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया या अपने आप उस पुल में तीन
धनुष से काट दो
काट दिया इसलिए उसका नाम धनुष काटी से धनुष कोटिया हो गया। नाम था धनुष काटी और वो हो गया फिर पीछे से धनुष कोटी। कैसे हुआ रामेश्वरम नाम कैसे पड़ा। अभी जो रामेश्वर टाउन है वहां पर रामेश्वर महादेव है बहुत विशाल मंदिर है वो नाम कहां से आया। हरिद्वार में देखा वहां पर राम झूला लक्ष्मण झूला, ये आया कहां से ये नाम? इसलिए नास्तिक लोग विशेष करके कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ दिन के बाद में कहेंगे जब कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यदि कोई मुसलमानों के संबंध में कोई ऐसा कह दे तो सिर उसी समय में कलम कर देंगे, रहने नहीं देंगे। ईसाइयों के संबंध में भी कुछ ऐसा कहिए वो भी ऐसा ही करेंगे, बौद्ध धर्म के विरुद्ध में कुछ कहिए ऐसा ही करेंगे। किंतु हम हिंदू लोग थोड़ा सा दुर्बल है, सहिष्णुता तो है किंतु ये दुर्बलता का लक्षण है। यदि हम नहीं जगे तो जिस प्रकार से आजकल ईसाइयों का प्रचार हो रहा है, धर्मांतर हो रहा है, कुछ दिन के बाद में हम लोग संख्या लघु हो जाएंगे और फिर इस देश से निकाले जाएंगे, कहां जाएंगे, फिर ये हरि कथा हम कहां कहेंगे। ये समय भी आ सकता है यदि हिंदू समाज नहीं जगा अपने धर्म के लिए, यदि नहीं उठ करके खड़े हुए, इसका प्रतिवाद नहीं किया, अभी समय है नहीं किया, गोवर्धन यदि बंद नहीं किया, यदि धर्मांतर ऐसे ही चालू रहा और हमारे राम और कृष्ण का अस्तित्व इसी प्रकार से नकारा गया तो फिर बड़ी भारी भयानक स्थिति होने वाली है। इसलिए प्यारे हिंदुओं, जगो, उठो और इसके लिए प्रतिवाद किया जाए। हम लोग देश विदेश में करोड़ों हिंदू हैं, 50 करोड़ से भी अधिक। यदि हम लोग आवाज उठाए तो यह सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे याद है गांधी जी अपने भजन में यही आरंभ करते थे, रघुपति राघव राजा, राम को तो नकारा नहीं। हमारे राष्ट्रपति पहले जो थे राजेंद्र बाबू, उनको देखा है बड़े राम भक्त थे, राम के चरणों में सुष्णवाते, वृंदावन में आते, मथुरा में आते, सब मंदिरों में जाते, साधु संतों का चरण छूते थे। पटेल जी का नाम सुना होगा, लौह पुरुष, वो कितने भक्त थे, उन्होंने सोमनाथ जी का मंदिर बनवा दिया और आज इसके विरुद्ध में ये सब आवाजें उठ रही है, राम का अस्तित्व नहीं, भागवत पुराण इत्यादि सब मिथ्या है, वेद मिथ्या है। इसलिए हम लोगों को जग करके उठना होगा। मुझे खुशी है कि यहाँ पर श्री रामेश्वरम सेतु रक्षा मंच यहाँ है, यहाँ पर सुनते हैं कि गोरक्षा समिति भी है, यहाँ पर धर्मांतर के संबंध में एक समिति यहाँ है। इन लोगों को देश में विदेश में सर्वत्र प्रचार करना चाहिए, हिंदुओं को जगाना चाहिए, तब तो ये हिंदू धर्म रहेगा, उसमें भागवत रहेगी, रामायण रहेगा और फिर हमारा कल्याण हो सकेगा, हम उनके संबंध में जान सकेंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही हम लोग एक तरह से जैसे बंगाल में, पूरब बंगाल में, कि यहाँ पाकिस्तान में हिंदू थे, अब क्या हुआ, जबरदस्ती पहले मुगल काल में तलवार के बल में हिंदू से मुसलमान बनाया गया, अब लोभ दे करके, रुपए का, स्त्री का लोभ दे करके बनाया जा रहा है। फिर हमारी ये धर्म संस्कृति कहाँ रहेगी, कहाँ यह कृष्ण का प्रेम दे सकेंगे। इसलिए इसके पहले हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, यद्यपि हम लोगों को सहिष्णु होना है, सहिष्णु हम होंगे। हमारे भागवत में कहा गया है, प्रहलाद महाराज का चरित्र दिया गया है, उनके पिता हिरण्यकश्यपु नास्तिक था, ऋषियों का यज्ञ बंद कर दिया, गायों की हत्या होने लग गई और सब चीजें धर्म के विरुद्ध होने लगी, उसी के कुल में प्रहलाद पैदा हुआ। वो कैसा हुआ, उसका चरित्र कैसा है, उसका चरित्र सुनने से हम लोगों में भक्ति की निष्ठा होगी। हमारे श्रीमान तीर्थ महाराज जी, उसके प्रहलाद महाराज जी के चरित्र में संक्षेप में कुछ बतलाइए।